श्री राधा माधव भगवान की। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की। श्री राधा श्याम सुंदर जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इस विश्व में आज के समय में एकत्र हुए लोग एकत्र होकर भगवान के नाम को पुकार रहे हैं, ये बहुत ही दुर्लभ सीन है, बहुत दुर्लभ दृश्य है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग भगवान के विषय में सुनने के लिए आए हो, ये भी बहुत दुर्लभ चीज़ है। बाहर के दुनिया में किसी को भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, सब लोग धक्के खा रहे हैं, सब लोग कष्ट भोग रहे हैं, सब लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी उनको भगवान में इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने ही धुन के में बिजी हैं, बहुत अपने ही धुन में मग्न हैं, और अपने ही धुन में मग्न होने की वजह से कंटिन्यूअसली माया के लात का प्रहार खा रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो ये बहुत भाग्यवान की भाग्य की बात है कि आप सब लोग एकत्र आकर भगवान को पुकार रहे हो, क्योंकि भगवान इतने पावरफुल वस्तु है, पावरफुल व्यक्ति है, कि उनको पुकारने से सारी समस्याएं दूर हो जाती है। अभी आप लोग क्या प्रभु जी आप बोल रहे हो, क्या इतना दुख है जीवन में, कभी कम नहीं हो रहे हैं, आप बोल रहे भगवान का नाम पुकार के सब समाप्त हो रहा है। सबसे पहले पता होना चाहिए दुख हो क्यों रहा है, क्या आइडिया आपका, आपका विचार क्या है, दुख क्यों हो रहा है, अपने जीवन में झांक के बताओ दुख क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? एनीबडी, विद्वान, पंडित, ज्ञानी, देखो आप सबके जीवन में दुख है, और आपको ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये दुख क्यों है, और आपको किसी को पता नहीं है, ये भाग्य की चीज है कि दुर्भाग्य की चीज है? आपको बुखार आ रहा है, पता नहीं किस लिए आ रहा है, टाइफॉइड हुआ है कि मलेरिया हुआ है कि डेंगू हुआ है कि वायरल है कि यूरिनरी इन्फेक्शन है, क्या है पता नहीं है, और हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कह रहे हैं कि बुखार आ रहा है, दर्द हो रहा है, सर फट रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो आप करें कुछ करते क्यों नहीं, पता नहीं क्या करना है, ऐसे बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे इस व्यक्ति को? उसी तरह से हमारे जीवन में अगर दुख है, और ये सब लोग मानते हैं कि है, क्या करें, प्रधानमंत्री से लेकर सबको दुख है, कोई फ्री नहीं है दुनिया में। कई मिनिस्टर लोग अभी भी कुछ लोगों का देहांत हो गया, कुछ लोग अभी वेंटिलेटर पर है, कोई फ्री नहीं है इसमें। तो दुख का कारण है हमारे कर्म, क्योंकि हम कुछ कर्म करते हैं और उसका परिणाम दुख में होता है, कुछ कर्म करते हैं बहुत कम जिसमें सुख का अनुभव होता है, लेकिन वो सुख का अनुभव कुछ देर के बाद में दुख का अनुभव में बदल जाता है। जैसे शादी के दिन, शादी के महीने में आनंद होता है बहुत, उसके बाद में बहुत दिन के बाद दुख होने लगता है कि मैंने क्यों शादी किया, सबसे बड़ा मेरा जीवन का परतंत्रता दिवस था वो, भारत का इंडिपेंडेंस हुआ लेकिन मेरा परतंत्र हुआ उस दिन, उसके पहले मैं आजाद पंछी था। तो वही सुख का दिन जो है वो आज दुख की गिनती में आ रहा है। क्यों? जब नई पैंट थी तो हम लोग कहीं बैठने के पहले 10 बार सोचते थे कहाँ बैठू कि नहीं बैठू, नई पैंट है। अभी उस पैंट को लेकर कहीं भी बैठ जाते हैं, बोले क्या पैंट है, बदलनी चाहिए। अभी वही पैंट जो पहले सुख का कारण थी अभी बोरिंग का कारण हो गई है ना। नई घड़ी ली, उसको कहाँ रखते थे, वो बाथरूम में रखते नहीं थे, वॉश बेसिन पर रखते नहीं थे, हमेशा गोद में रखते थे, जेब में रखते थे, टॉवल में रखूँ कहीं कहीं स्क्रैच ना आ जाए। अरे 50 स्क्रैच आ जाए उसके ऊपर, अभी कोई देखता नहीं उसको, हु केयर्स। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं यहां पर वो चीज जो मुझे आज खुशी दे रही है वही चीज मुझे जिंदगी भर खुशी देती रहे, ऐसा क्यों नहीं है? ताकि एक ही चीज प्राप्त करने के लिए मेहनत करूं, बाद में 50 बार 50 चीज प्राप्त करने की जरूरत है ही नहीं। ऐसा अच्छा रहेगा ना, एक ही चीज प्राप्त कर लो भाई, चलो एक कर्ता ले लो, इससे खुशी मिल रही है, आज से लेकर एंड तक मिलनी चाहिए, बस एक कर्ता ले लो, जीवन का प्रॉब्लम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, यही करताल बोलेंगे क्या बढ़िया करताल है, क्या आवाज़ आ रही है। फिर अगले दिन आप एक करताल लेके आते हो, बोलते हैं अरे क्या भद्दा बज रहा है, उसकी आवाज़ सुनो, है ना। तुरंत इसमें जो आनंद था वो खत्म हो गया। आपने जलेबी खाया, कितना आनंद आया आपको, फिर आपने बाजू वाले के डब्बे में देखा, चलो 5 मिठाई है, अरे यार मेरे डब्बे को कुछ वैल्यू नहीं है, देखो 5 मिठाई खा रहे हैं। मतलब जलेबी में आनंद है, लेकिन जैसे ही दूसरा आनंद सामने आता है ये जलेबी का आनंद समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों, आपको पूछना चाहिए ऐसा क्यों। कल मैंने एक जगह पर दावत में खाना खाया था, क्या आनंद आया था, लेकिन आज मैं मेरे घर के सिंपल रोटी और दाल खा रहा हूं। काश मुझे कल का भोजन आज प्राप्त हो जाता, कल मेरा पेट भर गया था तो और खा नहीं सका, मुझे बहुत भूख लग रही है लेकिन वो खाना नहीं है, वो कल की दावत समाप्त हो चुकी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हम सब लोग ने अपने कर्म के अनुसार ऐसी दुनिया में जन्म लिया है जिस दुनिया में सारी खुशियां शुरुआत वाली और अंत वाली हैं। हर एक खुशी यहां पर आप जो अनुभव करते हो, आप खुद अपने जीवन में झांक लो, जो जो आनंद का आप आज अनुभव कर रहे हो उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है और निश्चित रूप में कहीं ना कहीं उसका अंत होगा। और हमारा स्वभाव जो है वो एकदम उसके उल्टा है। हमारा स्वभाव है आनंदमयोभ्यासात, सच्चिदानंद मय है हम लोग, हम हमेशा ही आनंदित रहना चाहते हैं, ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। और ये स्वभाव कोई पाप नहीं है, ये स्वभाव है, नेचुरल है आत्मा के लिए। आत्मा मतलब आप और हमें आनंदित रहना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा का जो स्वभाव है उसके विपरीत स्वभाव के दुनिया में हम लोग आ गए हैं। जैसे आपको समझो, जरा सर्दी में आपको छींक आती है और दम लगता है, अस्थमा होता है आपको, और आपको रशिया में भेज देंगे तो क्या होगा, एकदम आपके स्वभाव के विपरीत हो गया ना वो। आप तो वहां पर हॉस्पिटल में रहना है, आपको घर पर रहने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल में बेड बुक करो परमानेंट, उधर ही आपका रहना है, उधर ही इलाज होगा, वहीं पर ठीक रहोगे आप, क्योंकि बाहर आते ही आप वापस बीमार पड़ने वाले हो। तो आत्मा के स्वभाव के विपरीत जगह यानी भौतिक दुनिया में हम लोग आए हैं। यहां पर हर खुशी का ये शुरुआत है और अंत है, और हर दुख का भी ये शुरुआत और अंत है, केवल खुशी का नहीं है। इसका मतलब होता है कि यहां की हर चीज टेम्पररी है, उसकी एक शुरुआत है, उसका एक एंड है। हर खुशी की शुरुआत है और खुशी का अंत है, हर दुख की एक शुरुआत है और दुख का अंत है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। जो आपको आज दिख रही है आप 10 साल के बाद जाओगे तो आप पहचानोगे भी नहीं कौन सी गली में आ गया मैं, इधर बचपन गुजरा मेरा, अभी कुछ पहचान में नहीं आ रहा है, कौन से मेरा घर था, कौन सी गली, कौन सी राइट लेफ्ट, इतनी नई बिल्डिंग आ गई, नए रास्ते बन गए, नई स्थिति आ गई, तो पता समझता नहीं क्या चल रहा है। वही मेरा होम टाउन था, बचपन से मैं यहाँ पर 25 साल रह चुका हूँ, आज पहचान में नहीं आ रहा है कहाँ आया मैं। हर चीज बदलने वाली है। तो शाश्वत क्या है, निश्चित क्या है, चिरंतन क्या है? चिरंतन आप हो, आपका स्वभाव चिरंतन है, तो आपको भी चिरंतन और शाश्वत विश्व में जाना है जहां आपके स्वभाव के अनुकूल वातावरण होगा और आपको बार बार सुख दुख के लिए ठोकरे खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा लगता है विचारिए, हो या ना हो अलग बात है, आज की स्थिति में आपको क्या लगता है कि हमको एक ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहां पर, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। ऐसा लगता है आपको इसी जगह जाना चाहिए जहां पर केवल प्यार ही हो, कोई गम ना हो, कोई आंसू ना हो, कोई दुख देने वाले ना हो, कोई शत्रु ना हो, जो भी हो सब मित्र हो, हित चिंतक हो, प्रेम करने वाले हो, ऐसा लगेगा, लगता है ना आपको? अभी आपके थोड़े अभी बाल काले हैं, थोड़े सफेद हो जाएंगे ना, तो लगेगा ये सब मिथ्या है, ये सब कुटुंब संसार विवाह संस्था रिश्ते नाते कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं ना तो का प्यार है ना, कसम वादे प्यार वफा सब नाते हैं ना तो का क्या, सब झूठ है, ऐसा लगेगा आपको कुछ देर के बाद। मुझे बहुत अच्छे लगते गाने पिक्चर के, ये फिल्म के गाने बहुत गहराई के सिद्धांत को सिखाते हैं हमको, बहुत गहराई के सत्य को सिखाते हैं। ये जो गाना है ना, किसी और की कहीं और गगन के तले, ये गाना सुनकर एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए गया था, उसने आत्महत्या कैंसिल किया, रेल के पटरी पर गया था, इतना परेशान हो गया था लाइफ में, हाँ नहीं जीना है मुझे ये जिंदगी में, नहीं सह सकता मैं इसके इतने दुख को, मुझे मर जाना है, सोच के यूथ में यंग एज में रेलवे ट्रैक पर गया था। तो अपना भारत देश इतना महान देश है ना, इतना महान देश है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उत्सव रहता है अपने पास, कोई गणपति है, कोई नवरात्रि है, किसी का बारसा है, किसी का शादी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, लाउड स्पीकर बजना ही है। तो उधर रेलवे ट्रैक के पास पास उल्टी दिशा में कोई होगा फंक्शन, कोई मंडप मंडप लगाया था, उसमें तो फूल वूल लगाए थे, उधर लाउड स्पीकर चल रहा था, उसमें गाना चल रहा था, आ लेके चले मैं तुझे हाँ ऐसे गगन के तले। तो वो रुक गया बेचारा, तो बोला कि ऐसा हो सकता है क्या, कैसी कोई जगह हो जहां पर कोई दुख ना हो, कोई आंसू ना हो, कोई बुरे टोचरे शब्द ना हो, हाँ कोई अपमान ना हो, कोई पराया ना हो, कोई दुश्मन ना हो, कोई कपटी ना हो, सब प्यार करने वाले हो, जहां देखो प्यार ही प्यार हो, जहां जाए वहां पर प्यार ही प्यार हो, हो सकता है क्या ऐसे? तो बोला देखने में क्या आ जाए, थोड़ा अभी ब्रेक ले लेते हैं, हाँ सुसाइड के प्लान में थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ देर के बाद ब्रेक के बाद फिर अपना शो शुरू करते हैं। तो ब्रेक ले लिया उसने, और भगवान की दया से, क्योंकि उसके मन में थोड़ी सी श्रद्धा जाग उठी थी कि ऐसी भी कोई जगह होगी जहां पर मुझे दुख नहीं मिलेगा, आत्महत्या करने का विचार करने तक आने तक नौबत नहीं आएगी, ऐसी भी कोई जगह होगी। और भगवान ने उसी इच्छा को हेरा, और उसी इच्छा को पकड़ के भगवान ने एक दिन उसको हरे कृष्ण मंदिर पहुंचा दिया, और आज हमारे मंदिर के वो वरिष्ठ भक्त हैं, वो सीनियर डिवोटी हैं, उसके अंदर अभी 50-60 लोग ट्रेनिंग लेते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं वो, और वो व्यक्ति ये गाना सुनकर आत्महत्या प्लान का कैंसिल करके एक महान वैष्णव बन गया। क्योंकि जब वो हरे कृष्णा मंदिर में आया, उसको वो ज्ञान प्राप्त हुआ कि हाँ ऐसी जगह है जहां पर आपको प्यार ही प्यार मिलेगा, कोई दुश्मन नहीं रहेगा, सब लोग प्रेम करेंगे, कल्याण करेंगे, अच्छा ही विचार करेंगे आपके लिए, गले लगाएंगे, सब लोग प्रेम ही प्रेम देंगे, कोई आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा विचार भी नहीं आएगा उस मन में, जो भी रहेंगे वहां पर जानवर प्राणी मनुष्य जितने भी रहेंगे सब प्रेमी रहेंगे, सब प्रेम करने वाले होंगे। और वो क्या है, भगवान का धाम, और वो आज आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन वो है, और उसका होने का जो प्रूफ है वो मंदिर में है। अगर वो मंदिर में गए होते और उन्होंने देखा होता, अरे यहाँ पर भी जो मंदिर के मठाधीश हैं वो उप मठाधीश से झगड़ा कर रहे हैं, भक्त लोग मारा मारी कर रहे हैं, मुझे जलेबी नहीं दिला, तुझे मिठाई नहीं मिली, मुझे खीर नहीं मिली, मेरी जगह पे तू क्यों बैठ गया, ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, हाँ तो बोला अरे मैं तो यहाँ पर खुशियाँ ढूंढने आया था, और यहाँ पर भी वही चल रहा है जो बाहर चल रहा है, तो मैं इधर क्यों आऊँ, वापस मैं रेलवे पटरी पर जाता हूँ और अपना ओरिजिनल प्लान को अंजाम देता हूँ, है ना। लेकिन मंदिर में जाने के बाद में उन्होंने वो प्रेम देखा भक्तों के बीच में, और वो प्रेम देखने के बाद में उसे विश्वास जता कि हाँ ऐसी भी कोई दुनिया होगी जहां पर मैं मौत के बाद जा सकता हूं, उसका जो है ना ट्रेलर वो इस मंदिर में चल रहा है, वो फिल्म आती है ना पहले, उसके आगे प्रोमो आता है, प्रोमो 2 मिनट का, वो फिल्म के बारे में, 2 घंटा की फिल्म के बारे में आपको 3 मिनट में समझा देता है कि फिल्म में क्या है। तो मंदिर का जो जीवन है वो गौलोक धाम, भगवान के धाम का ट्रेलर है, अगर नहीं है तो होना चाहिए उसको। तो वो क्या चीज है वो जानने के लिए आपका जीवन दिया आपको। आप मुझे बताओ, जितना दुख हमको होता है, कुत्ता बिल्ली को होता है कि नहीं होता है? यस और नो? क्या वो आपसे ज्यादा खुश है कि आपसे अधिक तकलीफ में है? कितना विचार करते हैं आप लोग, बाप रे, कभी कुत्ता चीज कभी देखा ही नहीं ऐसा लगता है आपको देख के। हाँ, क्या लगता है आपको, कुत्ता की जिंदगी में आपसे अधिक दुख है कि कुत्ता की जिंदगी में आपसे अधिक सुख है? क्या लगता है आपको? हाँ, दुख है ना। अरे बेचारों को घर नहीं है, बेचारों को इनकम का साधन नहीं है, 9 to 5 जॉब नहीं है, कुछ फिक्स तनख्वाह नहीं है, उनको ढेर सारे बच्चे हैं, कितनी तकलीफ है, कोई आके डंडा मार देता है, कोई कुत्ता आके खा, क्या कर मतलब क्या सिक्योरिटी क्या है उनकी? पंछी का जीवन देखो, यहाँ देख रहा है दाना खा रहा है, उधर देख रहा है दाना खा रहा है, पता है कोई आके मार लेगा, कोई कौवा खाएगा, कितनी तकलीफ है। चूहा ने 6 बच्चे को जन्म दिया, देख रहे कौवा, कोई आके काटते न ले उसको, कोई घर आके खाने ले उसको, कितना टेंशन है उनको। आपको तो ऐसा टेंशन है ना कि भाई अभी आप कथा सुन रहे हो, पीछे कोई खा जाएगा आपको, ऐसा कोई टेंशन है कि आपको बार बार आगे भी देख रहे, कथा सुन रहे बाद भी देख रहे, कोई आ तो नहीं रहा है, कोई शेर तो नहीं आएगा, कोई बंदूक वाला नहीं आएगा, कोई आतंकवादी तो नहीं आएगा, आराम से बैठे आप एसी में और कथा सुन रहे हैं, उनका जीवन में कितना टेंशन है। लेकिन उनके जीवन में उस टेंशन का उपाय ढूंढने का साधन नहीं है। वो ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, प्रभु जी मेरे जीवन में, कुत्ते के जीवन में इतना दुख क्यों है, ये दुख से मैं कैसी मुक्ति प्राप्त कर सकता हूं, कृपया मुझे बताइए, ये मेरी तीव्र जिज्ञासा है आपके पास महाजन महात्मा, कृपा करके बताइए, ऐसे पूछ सकते हैं क्या वो? कोई पंछी आपके दरबार में आया अब तक आज तक प्रश्न लेके? कोई बिल्ली आई, कोई कुत्ता आया, कोई चूहा आया, कोई पंछी आया क्या आपके जीवन में जो पूछ रहा है, महाराज मनुष्य जीव, हे दिव्य मनुष्य जीव, मुझे बताइए कि मेरे जीवन के दुख का कारण क्या है, इसे मुक्ति कैसे प्राप्त कर लूं, उसे पूछता है क्या? लेकिन आप शायद नहीं पूछते होंगे, लेकिन आप पूछ सकते हैं, यही आपका भाग्य है। और ये पूछ सकने के बाद में आपको जवाब भी मिल सकता है, जो सही सही जवाब मिल सकता है, वो भी योजना भगवान ने बना के रखी है। और आपने प्रश्न पूछ भी लिया और सिंसियरली जवाब ढूंढ के भी लिया, तो उस उत्तर के अनुसार जीवन को बिताने का भी आपके पास मौका है कि ठीक है आज तक मैंने गलत रास्ते में जीवन बिताया, आज से मैं इस रास्ते में जीवन बिताऊंगा, और मुझे विश्वास हो गया है, अनुभव हो गया है कि मैं खुश हो जाऊंगा इससे, पहले दुखी था मैं, आज मुझे यकीन हो गया है कि मैं खुश हो जाऊंगा, और मैं 10 दिन तक ये कर देगा, मुझे बहुत आनंद का अनुभव हुआ है, और मुझे विश्वास है कि इसे आगे भी करूंगा जीवन भर, तो और खुशियां मिलेगी मुझे। ये सारा स्टेप है ना, 1 2 3 4, ये केवल आपके लिए है, कुत्ता बिल्ली पंछी के लिए नहीं है। और वो जो धाम है भगवान का, उसकी जानकारी केवल आपको हो सकती है और किसी को नहीं हो सकती है। ना जानकारी है ना वहां जाने का रास्ता है, इसलिए हमारा जीवन बहुत भाग्यवान है। हमारे जीवन में गोकुलाष्टमी है, रामनवमी है, कुत्ते के जीवन में भी है, लेकिन उसको पता चलता है क्या? उसको क्या मालूम, आप लोग सज के जा रहे हो, वो लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, बहुत हाथ में मिठाई भी रखी है, मुझे मिलेगी तो अच्छा रहेगा, ये सोचते हैं वो। उसको पता नहीं कि रामनवमी है आज, हनुमान जयंती है, उसके लिए बना रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, वो तो पटाखे फोड़ के परेशान हो जाते हैं वो, कितने कुत्ते लोग मर जाते हैं वो पॉइजनस फ्यूम से, तो उसको पता नहीं ये पटाखे को फोड़ रहे हैं। हम बोले भैया तो कुत्ता है, तेरे को मालूम नहीं, हमारी जन्माष्टमी आज। लेकिन कहने का तात्पर्य है, जोक्स को छोड़ दो आप, तात्पर्य कहने का यह है कि वो भगवान कौन है जिनका धाम इतना आनंद से भरा हुआ है, वो जानने के लिए जिंदगी हमारी। नहीं तो क्या वो सभी जीव 2-4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 15 घंटे दिन भर मेहनत करके 2 रोटी कमा लेते हैं, कुत्ता भी अपना हड्डी कहीं ना कहीं पकड़ लेता है, कोई कुत्ता हमारे सोसाइटी में आज तक भूखा नहीं मरा है, पता है आपको? एक एक कुत्ता 6-6 पिल्ले को जन्म देता है, और कई कुल्ले कुत्ते जन्म देते हैं, और अचानक अगले महीने में 12 कुत्ते एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और सभी अपने बढ़ रहे हैं, फटाफट बढ़ रहे हैं। मैं बाहर से आता हूँ ना, कभी 8 दिन सफर करके आता हूँ, तो एकदम बड़े हो गए, फिर और कहीं जाके वृंदावन जाके आए एकदम बड़े हो गए, जोरदार भौंक रहे हैं, भले क्यों क्यों कर रहे थे, भाव 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 चालू हो गए उनका भी, मतलब साइज बढ़ गई उनकी, तो साइज कैसे बढ़ रही है, बिना कुछ मिले बढ़ रही है क्या? सबको मिल रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में वो सुविधा नहीं है जो आपको प्राप्त है। इसलिए कुत्ता बिल्ली भी अपना पेट भर लेते हैं, अरे हम भी अपना नर्स बनाए, कोई डॉक्टर बनाए, कोई क्लर्क बनाए, कोई और कुछ फलाना बनाए, कोई म्यूजिक बजाता है, कोई डांस करता है, पेट भर लेता है, उसमें क्या बड़ी बात है? पेट भरने का प्रिंसिपल सेम है। पेट भरने के प्रिंसिपल के आगे जाकर आप कुछ कर रहे हो, समझ रहे हो कि मैं कौन हूं, दुखी क्यों हूं, सुखी कैसे बनना है, वो कौन है, उसका धाम कहाँ है जिसको भगवान कहते हैं, ये आपने पूछ लिया ना, तो आपके लाइफ में कुछ मतलब है। नहीं तो सब कुछ बेकार है, क्या फायदा है? खाली कपड़े पहन के घूमते हैं हम लोग, कोई जानवर नहीं है, और वो नंगे घूमते क्योंकि जानवर है, वो पेट भरते हम भी पेट भरते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं हम भी बच्चे पैदा करते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? बच्चे पैदा करते की बड़ी बात है क्या? वो तो कुत्ता बिल्ली भी एक साथ छे छे करते हैं, हम लोग तो एक ही करते हैं जनरली। तो वो जो भगवान है उनको जानना हमारा जीवन है, और वो भगवान बड़े दयालु हैं। अभी आप बोलेंगे अरे एक व्यक्ति को ना, एक वारकरी को एक ऐसे आम आदमी ने पूछा, क्या कितनी बार गए पंडरी में, कितनी बार वारी किया तुमने? बोले जब से मैं 3 साल का था ना तब से कर रहा हूँ, आज मेरी 70 साल की उम्र हो गई, एक भी वारी चुकी नहीं मेरी पंडरपुर की, हर बार जाता हूँ मैं। तो कहते हैं दिखा क्या विठल, दिखा आपको दिसला का विठल दिसला? तो नहीं। तो क्यों जा रहे हो? 63-67 ईयर्स हो गए आपके, अभी भी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो? इतनी बार में एक बार भी दर्शन नहीं हुआ, मतलब भगवान का साक्षात, मूर्ति का चरण छुआ होगा लेकिन दर्शन मिठोबा का हुआ क्या आपको? वो नहीं हुआ अब तक, तो क्यों जा रहे हैं आप लोग? तो वारकरी ना एकदम सीधा साधा आदमी है, गाँव का आदमी, एकदम किसान आदमी, गरीब आदमी, दिखने में सुंदर नहीं, फटी छा धोती पहना हुआ है, उसने बस ही बड़ी बात बता दी उसको। वो कहते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कुत्ते होते हैं, 50-60 कुत्ते होते हैं, एक एक बिल्डिंग का सहारा लेके रहते हैं, है ना, और वो सोसाइटी में गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, ऐसे 4-5 गेट होते हैं, यहाँ से जाएंगे तो हमारा घर आएगा, वहाँ से डॉक्टर बीसी शाह का घर आएगा, ऐसे अलग अलग गेट होते हैं। तो गेट नंबर 1 पे एक कुत्ता एक चोर को देखता है और भौंकना शुरू कर देता है, तो फिर आपका अनुभव क्या है उसके बाद में क्या होता है बताओ? जब एक कुत्ता एक चोर को देख के भौंकता है तो बाद में क्या होता है? सब शांत हो जाता है। हाँ, इज दैट ट्रू? नहीं, वो एक बार एक कुत्ते ने एक चोर को देखा तो सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं, यहां तक कि गेट नंबर 3 जो गेट नंबर 1 के बिल्कुल उलट दिशा में 2 किलोमीटर अंतर पे है वहां का कुत्ता भी भौंकने लगता है। वो क्यों भौंक रहा है? थोड़ी उसने चोर को देखा है, लेकिन उसको विश्वास है जो पहला कुत्ता भूखा है उसने चोर को देखा है, इस पर विश्वास है उसको, इसलिए उसको सपोर्ट में वो बिना देखे भी यहां से भूख रहे हैं, और वही नहीं सारे 50 कुत्ते भूख रहे हैं, क्योंकि उसको श्रद्धा है कि पहला वाला जो भूखा है ना वो ऐसा पागल नहीं है, वो कुत्ते को चोर को देख के भूखा है वो। तो वैसे हमारे सारे संत बोल रहे हैं कि अजी मियां ब्रह्म पाहिला आनंद अचे डोही आनंद तरंग, हाँ हरी पाहिला देही, हरी पाहिला देही, आज सोनी आसा दीना, हाँ? वो कह रहे हैं तो हमको क्यों नहीं श्रद्धा रखना चाहिए? और कुत्ता अगर श्रद्धा रखता है एक कुत्ते पर जिसने चोर को देखा है, तो तुम लोग तो इंसान हो। और संत कह रहे हैं कि आज मैं विठोबा का दर्शन किया है, आज सोनी आसा दिन, आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है। तो आदमी चुप हो गया, वो आदमी उसने बोला अरे तुम लोग इतना पंडरपुर के वारकरी पर टिका करते हो, तुम लोग सब लोग बस में बैठते हो, तुम लोग सब लोग ट्रेन में बैठते हो, कभी कभी हवाई जहाज में बैठते हो, कभी ड्राइवर को मिले हो क्या? आप जाके मिले हो, उसका लाइसेंस पूछा है उसका, कितने साल का ड्राइविंग किया तुमने, कितना एक्सीडेंट किया, कितना लोगों को मार डाला, चक्र के नीचे दबा डाला, कभी पूछा है क्या? बताओ मुझे लास्ट आपने कितने, आप में से कितने किसी व्यक्ति ने लास्ट में कभी पूछा ड्राइवर को, रिक्शा ड्राइवर को, या वो तो बहुत पास में रहता है तो तुरंत पूछ सकते हो उसको, ट्रेन का ड्राइवर दूर रहता है बहुत, फ्लाइट का तो पता नहीं किधर रहता है, अदृश्य रहता है, पता हो लास्ट टाइम कभी पूछा था आपने उसको कि भाई साहब जरा लाइसेंस दिखाओ मेरे को जाना है आपके साथ बैठ के, पूछा है क्या कभी? तो बिंदास बैठते हो आप लोग बस में, ट्रेन में, रिक्शा में, ओला में, उबर में, सब जगह जाकर बैठते हो और पहुंचते भी हो सही जगह पर, ऐसा नहीं कि भाई कहीं अगली में गए, कहीं नागपाड़ा में पहुंच गए, कभी किधर अंधेरे में पहुंच गए, ऐसा नहीं, जहाँ जाना वहीं पहुंचते आप लोग, पैसा भी देते हैं, मीटर चलता है, सब कुछ चलता है। तो वो चीज आप बिना श्रद्धा के करते हो, नहीं श्रद्धा से ही करते हो, है ना। एक्चुअली आपको विश्वास है कि मैं भटक नहीं जाऊंगा। मैंने कहा विरार की ट्रेन पकड़ी है तो वो चर्च गेट नहीं जाएगी, विरारी जाएगी, या वो मुलुंड नहीं पहुंचेगी वो विराट की ट्रेन। ये आपको श्रद्धा है और वो श्रद्धा रखने को आप तैयार है, और उस श्रद्धा के असर पर आप पूरा जीवन भी चलाने को तैयार है। लेकिन संत लोग बोल रहे हैं कि भगवान है, हमने दर्शन किया है, तो बोलते क्यों देख रहे हो उसको, वो एक पागल है, तुम भी साथ में पागल बन रहे हो। विचार करो इस बात पर, हम सब लोग इस श्रद्धा पर चल रहे हैं। जिन आपने यहां पर नौकरी लिया, आपने इंटरव्यू दिया, आपको बताया गया ये काम होगा आपका, ये तनख्वाह होगी, और आपने ज्वाइन कर लिया, क्या आपको डे वन में पगार दिया था हमने? बोलो किसको दिया था डे वन में पगार आते ही? अरे डे वन के बाद में महीना भर काम किया आपने धाक धुक में, पता नहीं पगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फोकट में काम करके बोलेंगे एक महीने के बाद जाओ, भी नौकरी नहीं आपका इधर। लेकिन सब लोगों ने आपने काम किया और एंड में आपको पगार भी मिला, और फिर अगले महीने काम किया, तब तक पता नहीं था कि दूसरे महीने के एंड में पगार आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उसके एंड में भी आया और आज भी आ रहा है। तो श्रद्धा कुछ नाम की वस्तु होती कि नहीं? तो भगवान भगवान का भूल भुलैया है क्या ऐसा भगवान? अरे जीवन भूल भुलैया है, भगवान भूल भुलैया नहीं है। जीवन सत्य भूल भुलैया और भगवान सत्य है, और हम जीवन को सत्य मानकर भगवान को भूल भुलैया मानते हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है। सोचने के लिए जीवन दिया है ये मनुष्य के लिए, मनुष्य क्यों बताया मनुष्य मनुष्य जीवन को? जिसको मन है विचार करने लायक उसको मनुष्य कहा है। जानवर को भी मन होता है, विचार करने लायक नहीं होता है, वो खाली खाना पीना रहना सेक्स के लिए काफी होता है, उसके ऊपर विचार करने के लिए मन नहीं है उसका, इसलिए उसको मनुष्य नहीं कहा गया है। आपको मानव और मनुष्य कहा गया है, क्योंकि आपको विचार करने लायक, आपके रूटीन चीजों के ऊपर उठ के विचार करने योग्य आपको मन दिया गया है, जिसके ऊपर आप विचार कर सकते हो कि यहाँ काम करूँ कि वहां करूँ, ये लड़का अच्छा है पति बनने के लिए कि ये लड़का अच्छा है, ये विचार करने के लिए आपको मन दिया है भगवान ने। कुत्ता बिल्ली में मन नहीं होता, ऐसा जरूरत भी नहीं होती उसकी। तो वही मन से आपको प्रश्न पूछना है, ऐसा क्यों, जो मैंने शुरुआत किया था ना, ऐसा क्यों, वो उसी मन के द्वारा आपको प्रश्न करना है, फिर उत्तर मिलेंगे आपको। अगर प्रश्न ही नहीं करेंगे तो उत्तर कैसे मिलेगा? उत्तर तब आता है जब आप प्रश्न करते हो। प्रश्न करने के लिए जीवन दिया है आपको, अगर आपने प्रश्न किया ही नहीं तो आपको कोई उत्तर मिलेगा ही नहीं। और वैसे ही कुत्ता बिल्ली की तरह हमारी जिंदगी भी आगे बढ़ेगी, समाप्त हो जाएगी एक दिन। अभी कुत्ता तो बाद में बिल्ली, बाद में पंछी, नहीं तो और कोई गधा, या तो पेड़ बनेंगे आप, हम सब लोग। इसलिए ये उत्सव इतने महत्वपूर्ण है। अभी गोकुलाष्टमी आ रही है, आप बोल रहे प्रभु जी गोकुलाष्टमी की बात करने के बदले आप कुत्ता बिल्ली की बात क्यों कर रहे हो? अरे वहां से उठेंगे तो ही भगवान की तरफ पहुंचेंगे ना, उसी स्तर में पड़े रहेंगे तो और क्या कहें उसके लिए। तो जिस सर से उठना है उसके लिए चर्चा कर रहे हैं, पहले कहां से उठना है, पहले फिर कहां पहुंचना है उसकी चर्चा। उठेंगे नहीं तो कब पहुंचेंगे कैसे? अरे चल चल ट्रेन आ गई, उठो अभी, तो सो गया है कुर्डवाड़ी स्टेशन पे, क्या करेंगे अभी? तो उठेगा तब पकड़ेगा ना ट्रेन, मुंबई हैदराबाद कहां जाना है उसको, उठेगा नहीं तो कैसे ट्रेन पकड़ेगा वो। तो पहला स्टेज है उठने का, उत्तिष्ठत जागृत, उसके बाद में ध्येय की ओर जाना है, ऐसे विवेकानंद स्वामी कहते थे। उत्तिष्ठत जागृत और आगे ध्येय की ओर यात्रा करनी है। और ध्येय है उठने के बाद, जागृत होने के बाद, तब तक कोई ध्येय नहीं, तब खाली सपना ही सपना है। नींद में क्या देखता है आदमी? केवल सपना देखता है, और सपना कभी सच नहीं होता है। सपने में राजा बनते हैं, हमारा राज्याभिषेक करते हैं, है ना। कल सपने में मैंने मालूम है पूरा मंदिर बांध दिया, पूरा 2 घंटे के अंदर पूरा मंदिर बांध के तैयार हो गया, स्टार्ट टू फिनिश। जब उठा तब मैं बिस्तर में था, मंदिर कहीं नहीं था। यही सच्चाई है जीवन में, या ये तो अच्छी चीज सपने में देखी, नहीं तो क्या हुआ, अरे शेर आया, फिर मैं सपने में उठा भागा उसके ऊपर, कुछ अटैक किया, 2-4 लोग को इकट्ठा किया, डंडा लेके ये आया और शेर को भगा दिया, फिर इतना पसीना आया, इतना ब्लड प्रेशर, इतना पाल्पिटेशन हो गया, उससे झाग आ गई, देखेगा तो मैं मेरे बिस्तर में लेटा हूँ, ना जंगल है, ना शेर है, ना डंडे है, ना कुछ नहीं है। चलो उठकर, अभी लेट हो गया आज सपने की वजह से, काम को जाना है, लेट हो जाएगा वो, फिर वो 15 मिनट लेट हो गया तो आप सीरियल कट जाएगा, चलो भागो अभी यहाँ से। ये स्थिति हमारे जीवन की है। इसलिए हमको समझना चाहिए कि हम कौन है, क्यों आए हैं, क्या मकसद है हमारी जिंदगी का, और वो मकसद समझ में आया तो कैसे हासिल करना है। इसलिए ये उत्सव है। तो भगवान को क्या जरूरत है? अरे जो लोग उनको छोड़ चुके हैं, जो लोगों ने उनका त्याग कर दिया है, उनके बीच में बार बार आके मत्था फोड़ने की क्या जरूरत है? उनको अपने धाम में खुश है, वो इतने बहुत सारे भक्त हैं उनके, उनके साथ सेवा करते रहते हैं, उनका आनंद देते रहते हैं, उनको छोड़कर यहां पर क्यों आते हो? संभवामी युगे युगे, हाँ ऐसे पागल है हमारे भगवान, एक बार नहीं बार बार आते रहते हैं, आते रहते हैं बार बार, हर युग में आते रहते हैं अलग अलग रूप में, क्यों आते हैं? वो प्रेम की वजह से आते हैं, और कहते भी है वो कि मुझे भी प्राप्त करना है तो प्रेम की जरूरत है। हम उनको छोड़कर सब पर प्रेम कर लेते हैं, उन पर छोड़ के सब पर प्रेम कर लेते हैं, सब पर प्रेम कर लेते हैं, सबके ठोकरे खा लेते हैं, लेकिन उन पर प्रेम नहीं करते हैं जो प्रेम देते हैं, जो धोखा देते हैं उस पर प्रेम करते हैं, जो भूल भुलैया है उस पर प्रेम करते हैं, जो असत्य है उस पर प्रेम करते हैं, जो सत्य है, जो कभी ठोकर नहीं देता है, जो कभी ठोकरा नहीं देता है, प्रेम करता है उस पर प्रेम नहीं करते। अरे दुर्भाग्य और किसको कहते हैं? यही तो दुर्भाग्य है, इसको सत्य की पहचान नहीं है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य वही है जो रियल क्या है जानता नहीं है और झूठ मूठ के पीछे भागते रहता है, उसी को दुर्भाग्य कहते हैं। और कोई दुर्भाग्य नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे काले बाल नहीं है, तुम्हारे पास छोटे बाल है लंबे बाल नहीं है, जो भी कुछ है ये दुख की कारण नहीं है। असत्य को सत्य मानकर चल रहे हैं ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और सत्य को असत्य मान रहे ये दूसरा दुर्भाग्य है। दोनों प्रॉब्लम है, असत्य को सत्य मानना और सत्य को असत्य मानना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। इसको मिटाना है तो संतों के संग में बैठना पड़ेगा, शास्त्र सुनना पड़ेगा, उस शास्त्र सुनते सुनते भगवान की पहचान हो जाएगी, वही सत्य है। उस सत्य के पीछे लगेंगे तो कोई असत्य आपको कभी तकलीफ नहीं देगा, कोई असत्य का कष्ट नहीं होगा आपको, कोई असत्य आप जीवन को बहकाएगा नहीं। और यही श्रेष्ठ उद्देश्य है जन्माष्टमी का, कि भगवान एक ही इवेंट है। गोकुलाष्टमी में क्या हो रहा है? भगवान का जन्म का दिन है वो, बस जैसे आपका जन्म का एक दिन है, आप बर्थडे मनाते हो, वैसे उनका जन्म का दिन है वो। एक सिंपल घटना है, बाकी तो बहुत लंबी घटनाएं हैं पीछे आगे उसकी, लेकिन ये घटना हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनका जन्मदिन है। इस पर भी चिंतन करेंगे ना तो भी हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, कि क्यों जन्म ले रहे वो। यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का विकास होता है, तब मैं जन्म लेता हूँ, धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वालों को नष्ट करने के लिए मैं दोबारा आता हूँ। और कहते हैं ये भी सब कारण ऊपर ऊपर के कारण है, कि रियल कारण यह है कि वो भक्तों पर प्रेम करते हैं और प्रेम दिखाने के लिए, जताने के लिए आते हैं। अगर प्रेम नहीं होता तो इतना कष्ट भगवान नहीं लेते। कष्ट क्यों कह रहे हैं हम उसको? क्योंकि ये दुनिया में क्या स्थिति है मालूम है क्या आपको? सब लोग मर रहे हैं, सब लोग बूढ़े हो रहे हैं, सब लोग बीमार हैं, यहाँ पर एक दूसरे से आदमी को तकलीफ है, यहाँ पर खुद से भी आदमी को तकलीफ है। एक शख्स परेशान सा घूम रहा है यहाँ पर, सब लोग मतलब ऐसे ही, खुद से भी परेशान है, क्योंकि खुद ने कुछ सोचा था, खुद ने कुछ गलत काम किया तो उसका परिणाम भोग रहे हैं, तो खुद से भी परेशान है, दूसरों से भी परेशान है, और आसपास में जो वातावरण है गर्मी सर्दी बारिश का उससे भी परेशान है। ऐसे वातावरण में भगवान जन्म ले रहे हैं। अरे भगवान क्यों जन्म ले रहे हो? आपके लोक में तो आनंद ही आनंद है, यहाँ पर क्यों आ रहे हो? तो भगवान क्या जवाब देते हैं कि मैं यहाँ पर आता हूँ कि मेरे प्यारे जीव जो मेरे पुत्र और पुत्रियाँ हैं वो भटक गए हैं और इस दुनिया में दुख भोग रहे हैं, जो जो मैंने बताया उसका दुख भोग रहे हैं सब लोग, उनको रिहा करने के लिए मैं आ रहा हूँ, अपने घर वापस लौटने के लिए बुलाने के लिए आ रहा हूँ, और आया ही हूँ तो कुछ लीला भी दिखा लेता हूँ ताकि उनका विश्वास बैठे मेरे ऊपर, कुछ विश्वास पैदा हो जाए, विश्वास कुछ परवरिश हो उसकी, कुछ वृद्धि हो मेरे ऊपर, जो मैं कह रहा हूँ उस पर श्रद्धा उत्पन्न हो, और मेरे पीछे अगर आ जाएं तो मैं उनको ज़रूर हाथ पकड़ के अपने घर ले जाऊँगा, उसी घर में जहाँ गम भी नहीं है, आंसू भी नहीं है, सब प्यार ही प्यार पलता है, ऐसे घर में ले जाऊँगा, फिर दोबारा उनको यहाँ पर आकर ठोकरे खाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए वो आते हैं, नहीं तो क्या जरूरत है उनको आने के लिए। और ऊपर से वो इतने दयालु हैं, वो कहते हैं कि जन्म कर्म चमी दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे इस जन्म को बोलता है उसके बारे में, जन्म के बारे में चर्चा करता है, जो जन्म के बाद में जो मैं कर्म करता हूं उसके बारे में चर्चा करता है, उतना करने से ही वो मेरे पास लौट के आता है। दोबारा मृत्यु के समय मरने के बाद में दोबारा लौट के इस दुनिया में दुख भोगने के लिए वो नहीं आता है। मतलब अपने को करना क्या है? अगर हम भटक गए हैं और हमें हमको थोड़ा नॉलेज मिल गया है तो हमको करना क्या है? हमको केवल उनके जन्म के बारे में और उनके कार्य के बारे में चर्चा करनी है। वैसे भी हम किसी ना किसी के कार्य के बारे में चर्चा करते रहते कि नहीं रहते हैं, बताओ? अरे वो अमित शाह क्या कर रहा है, अरे वो प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, अरे उसने क्या किया, अरे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, अरे वो हमारा सरपंच क्या कर रहा है, वो फिल्म स्टार क्या कर रहा है, वो हमारा ये कौन कर रहा है, वो हमारे रिश्तेदार में वो है वो कौन क्या कर रहा है, हमारा समाज का अध्यक्ष वो क्या कर रहा है। देखो, आप थोड़ा विचार करके देखो कि हम लोग दिन में कितने लोगों की क्रिया के बारे में चर्चा करते रहते हैं। हम लोग सब लोग अपने एक दिन के अंदर सैंपल दे लो और एक दिन के अंदर चर्चा करके विचार करके देखो कि आज के दिन में मैंने कितने लोगों के कार्यों के बारे में चर्चा किया। पेपर में पढ़ के उसके बारे में पढ़ाई किया तो और कर चर्चा किया, और न्यूज़ सुना तो वो चर्चा किया, हॉस्पिटल में आए किसी ने कुछ बोल दिया वो चर्चा किया, फिर ये चर्चा किया, फिर वो चर्चा किया, फिर किसी ने जान बचाई किसी की बुड़ते हुए पानी में से उसकी चर्चा किया, फिर किसी ने मोटरमैन की चर्चा किया, उसने अपने जीवन को रिस्क में लाकर गाड़ी रोकी और 50 लोग के जान बचा लिए। ऐसे हमेशा हम लोग चर्चा करते रहते हैं। तो किसी व्यक्ति के अच्छे खास करके या भयंकर बुरे कार्य के बारे में चर्चा करना हमारा स्वभाव है। अरे पता है वो व्यक्ति ने एक साथ बंदूक उठाई और 6 लोग को गोली मारकर खत्म कर दिया, इसकी भी हम चर्चा करते। तो व्यक्ति के विषय में चर्चा करना हमारा स्वभाव है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। खाली विषय चाहिए बस, और वो विषय अगर भगवान हो जाए तो उसकी चर्चा करने में जो आनंद आता है वो किसी की चर्चा करने में नहीं आता है। आप रोज पढ़ते हो इसने खून किया, उसने रेप किया, इसमें गाड़ी चढ़ा दिया, गाड़ी नाव में डूब गई, ड्राइवर ने गलती किया, मोटरमैन ने गलती किया, गाड़ी फेल हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म खत्म हो गया और ट्रेन पटरी से निकल गई, कितनी रोज पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन दिल में खुशी होती क्या वो पढ़ के? देखो मुझे कितना नॉलेज है, आज 7:57 पे मलाड से गाड़ी पटरी पे उतरी थी, 3 मिनट के बाद में 325 लोग नीचे गिर गए थे। हाउ मच नॉलेज आई गॉट, क्या फायदा है उसका? लेकिन आप भगवान की उसी चीजों को बार बार अनंत बार डिस्कस करो, कभी भी आपको बोर नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल मैं हूं, मैं दिन रात यही कथाएं करता रहता हूं। यहां कहीं क्या कथा किया तो वो कथा मैं और कहीं जाके कर सकता हूं, तो कोल्हापुर में करूंगा, अभी भार्गव जाऊंगा तो भार्गव करूंगा, दिल्ली में करूंगा, वही कथाएं, कोई नई कथाएं नहीं है, नहीं पढ़ते रहता हूं, लेकिन अक्सर जो पुरानी कथाएं वही रिपीट करते रहता हूं। अभी जगन्नाथपुरी का उत्सव आएगा तो वही कथाएं रिपीट करूंगा। लेकिन आप मुझे एकदम इत्मीनान से बताइए कि जब मैं वही रिपीट कथा आपको बता रहा हूं, ऐसा आपको कभी लगा है कि मुझे बोर हो गया बताने में? मैं वो कंटाल गया हूं पूरा वही कथा बता बता के। साफ साफ दिख रहा है कि सर अभी वो कथा बोल के बोर हो गए, वो भी खुद ढूंढ रहे कोई नया कथा मिलेगी तो अच्छी रहेगी, मैं भी बोर, सुनने वाले भी बोर, ऐसा कभी हुआ है क्या? मेरे विचार में तो नहीं हुआ है। उसी कथा को मैं उसी उत्साह से जब बताता हूं तो मुझे भी नया दुगना नया आनंद प्राप्त होता है। कथा तो वही है, वही वसुदेव है, वही देवकी है, वही कृष्ण है, वही यशोदा है, वही नंद महाराज है, वही कृष्ण है, वही बलराम है, नया आदमी तो कोई है नहीं बीच में इसमें। वही राधा रानी है, वही सखी ललिता विशाखा है, वही वृंदावन है, वही नंदगांव है, वही बरसाना है। लेकिन आनंद कैसा है? जो कल था वो आज नया है। आज जो कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं वो कल थे, लेकिन आज नए कृष्ण का आनंद प्राप्त कर रहा हूं, ये समझना है। वही हमारा दुनिया का प्रिय व्यक्ति, समझो आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, समझो आपका बेटा है, चलो बहुत दिन तक आपने बात किया, वो ऐसा करता है वैसा देखता है, फिर वो ऐसा करता है, फिर वो बटाटा वो अच्छा लगता नहीं है, फिर वो बटाटा निकाल के खाता है मैं सुनता हूँ माताएं कैसे बात करती रहती हैं, लेकिन वो कुछ दिन बाद में ये सब बातें बंद हो जाती है, फिर कहता है सुनता नहीं मेरा, वो लड़की के पीछे भाग रहा है, सिगरेट पीता है, मैं कितना समझाता हूँ उसको, वो चालू हो जाता है। मतलब एक विषय आप प्रिय वस्तु भी लेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे तो आप खुद ही बोर हो जाएंगे उसके बाद में। बाद में हरे बोलेगा ये सब बेकार है, छोड़ दो इसको, जाओ अभी, वही सब कोई संसार में मतलब नहीं है, ना बेटा है ना माता है ना पुत्र है ना पुत्री है, कोई किसी का नहीं, सब बेकार है, सारे मेहनत बेकार है, इसी अंजाम में सब लोग जाने अनजाने पहुंच जाते हैं, है कि नहीं भाई? तो हॉस्पिटल में जाके मिलो जो बुजुर्ग आदमी एडमिट होते हैं, उनका बोलो सर कैसा लगता है आपको अब जीवन में? तो अगर वो इंसान अगर ही बी ऑनेस्ट ना, अगर वो अगर क्या कहते हैं प्रामाणिक होगा ना, तो बोलेगा कुछ मतलब नहीं है, सब बेकार है। हमारा ये अनुभव, हमारे हॉस्पिस में लोग मिलते हैं ना हमको लास्ट स्टेज में, हम उसको पूछते हैं कैसा लगता है आपको, बोले कुछ नहीं सर सब बेकार है, सारी मेहनत बेकार है, यहाँ की सब कुछ जितना भी किया सब पानी में है यहाँ पर। लेकिन आप भक्त को मिलो और बोलो आपने 35 साल भगवान का नाम लेके अपना जीवन अर्पण किया है, वो कभी बोलेगा नहीं सब बेकार है, सब फालतू है, सब ये 35 साल बेस्ट वेस्ट हो गए, कुछ कर लेता तो आज का प्रेसिडेंट बन जाता इंडिया का मैं, ऐसा नहीं बोलेगा आपको वो कभी भी आपको। उसको हमेशा ही लगेगा कि जो मैंने किया अच्छा किया। मेरे पिताजी थे ना, पिताजी वो ना एक एक पंथ के अनुयायी थे, हाँ, और वो बहुत जाते थे उधर हमारे बचपन में, हर शुक्रवार को जाते थे, दान लेके जाते थे, कुछ बना के लेके जाते थे। और उसके बीच में फिर मैं हरे कृष्ण में आ गया, तो उन्होंने बहुत गाली दिया मुझे, क्या तुम पढ़ाई के टाइम पे हरे कृष्ण बने हो, अभी ये समय नहीं है, अभी तुम आगे पढ़ाई करो, फिर बहुत पैसे कमाओ, फिर बाद में भक्ति करो, ये उम्र नहीं है आपकी। और उनके मन में भी ऐसा विचार चल रहा था कि जो उनको करना था, अभी उनके बहुत बच्चे हैं, बहुत पढ़ाना है उनको, बहुत मेहनत करनी है, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, एक बार ये मैं लास्ट वाला इसका पढ़ाई हो गया ना, तो भाई फिर मैं पूरा ध्यान में अपना जीवन बिताऊंगा, ऐसा उनका भी विचार था। और मेरा पढ़ाई भी हो गया, मैं डॉक्टर भी बन गया, और वो भी रिटायर हो गए, वो भी फ्री हो गए। तो मैं पूछा पापा वो ध्यान का क्या हुआ, जो आप बोल रहे थे मुझे बताते थे कि तुम्हारी भी उम्र नहीं है, जब तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी तो मेरी समय आ जाएगा तब मैं करूँगा, उसका क्या हुआ पापा? पापा कहते हैं बेटा बहुत देर के बाद, पहले नहीं, बोले कि मुझे अभी एक यकीन हो गया है कि जो जिंदगी भर हम करते हैं ना वही एंड में कर सकते हैं, जिंदगी भर नहीं किया ना वो नया चीज़ एंड में नहीं कर सकते। जिसकी आपको हैबिट नहीं है पहले से पुरानी, वो आप बुढ़ापे में नहीं कर सकते नई चीज़, जो पुरानी हैबिट है वही करने में एक्सपर्ट रहेंगे आप। अगर पेपर पढ़ने को आपको इंटरेस्ट है तो आप पेपर ही पढ़ते रहेंगे, टीवी देखने में आपको इंटरेस्ट है तो दिन भर टीवी देखते रहेंगे, अगर सकाटा पिटने में गॉसिप करने में आपको इंटरेस्ट है तो रिटायर होने के बाद गॉसिप ही करेंगे। मैं वो करूँगा नया चीज़ वो नहीं कर सकते हैं, ये मेरे पिताजी ने हृदय के साक्षात्कार के रूप में मुझे बताया। मुझे बोला बेटा मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, क्योंकि तुम आज तुम्हारे युवा अवस्था में जो कर रहे हो वही तुम्हें बुढ़ापे में करने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको उसकी आदत लगी हुई है, वही आप कर सकेंगे आसानी से। ये एक एक्चुअली उसके बाद तुरंत मेरे पिताजी का देहांत हो गया, ये एक डेथ बेड पे बैठे हुए आदमी का साक्षात्कार है, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, मौत के बिस्तर पर लेटा हुआ जो आदमी होता है ना वो कभी झूठ नहीं बोलता, कितना भी वो दुष्ट होगा पापी होगा या कपटी होगा ना, मौत के बेड पर डेथ बेड पे आने के बाद में कोई झूठ नहीं बोलता। मेरे पिताजी ने हृदय द्रावक भाव से भावनापूर्णता से मुझे बताया कि मैंने तुम्हें बहुत टोका जब तुम युवा अवस्था में कॉलेज में पढ़ते थे हरे कृष्णा का जप करते थे, मैंने तुमको बहुत टोका, लेकिन आज 15 साल के बाद में तुम अभी डॉक्टर बनकर पढ़ाई कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो यहाँ पर हरे कृष्ण में सेवा कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है तुम अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आज तुम्हें जो आदत लगी हुई है वही बुढ़ापे में काम आएगी, बुढ़ापे में नया ट्रिक तुम नहीं सीख सकते, बुढ़े कुत्ते को नई सर्कस की ट्रिक नहीं सिखा सकते हैं। अगर नई सर्कस की ट्रिक सिखानी है तो आपको पिल्ले कुत्ते को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि पिल्ला कुत्ता ही नई नई ट्रिक सीख सकता है। कितनी बड़ी वजनदार बात है पिताजी ने बताई थी, मैंने कितने प्रवचन में बता चुका हूं आज तक मैं, क्योंकि बड़ी लाभदायक बात है ये। हाँ, आप सोचोगे कि अभी ना शास्त्र नहीं पढ़ूंगा, अभी मैं एक बार रिटायर हो जाऊंगा ना, सारे जमा करके रखे लाइब्रेरी में मेरे घर पे, 8-8 घंटा पढ़ूंगा। अरे 8 घंटे 8 मिनट के बाद सो जाओगे तुम किताब खोलते ही, अगर तुमको पढ़ने का अभ्यास नहीं है तो 8वें मिनट में तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी, किताब कहीं होगी तो पता नहीं चलेगा। अभी अगर तुम जवान हो और तुम्हें 8 घंटा पढ़ने की आदत अभी है तो तुम 8 घंटा आगे पढ़ोगे और 10 घंटा भी पढ़ सकते हो, लेकिन आदत ही नहीं है, खाली पढ़ूंगा 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 ऐसे सपने देखते रहोगे, तो वो जब रिटायर हो जाओगे तो 2 मिनट भी किताब खोलोगे तुरंत नींद आ जाएगी आपको। तो ये ऐसा विषय है भगवान का, जो जब जवान आदमी है जो उसका उत्साहपूर्ण अवस्था है तभी उसको इसमें रुचि लेना है कि क्या है भगवान मुझे ढूंढना है उसको। अरे बुढ़ापे में जोड़ा दुख रहा है, मृत्यु, जय हो श्री राधे श्याम। देखो जब तक हम चौंक नहीं जाते हैं तब तक जग नहीं जाते हैं, जब चौंक जाते हैं तो सत्य का परिचय होता है, तब तो तब तक तो नींद में ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने इंतजाम किया बीच में आपको चौंकाने का। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ वो पैंट जॉइंट पेन है, हाई बीपी है, डायबिटीज हो गया है, अभी किसी का दिमाग में कोई परेशानी है, किसी का हार्ट में परेशानी है, इतनी सारी समस्या है, और आप बोल रहे हैं आप रिटायर हो चुके हो ना, अब भगवान को ढूंढना है। अरे भगवान को ढूंढू कि ये जॉइंट पेन देखो मेरे, अभी कैसे कर सकता हूँ मैं, डॉक्टर को मिलूँ कि भगवान को मिलूँ? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है हार्ट के लिए मेरा अभी। आप बोले मंदिर प्रवचन में चलो, तो हार्ट के डॉक्टर के पास जाऊँ कि मंदिर में जाऊँ कथा सुनने के लिए, कैसे हो सकता है? वो जिसकी आदत बनी हुई है वही आगे लाभ होगा आपको। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ये ढूंढने का विषय जो है ये बचपन से अगर अपनाएंगे, जवानी से अपनाएंगे, तो बुढ़ापे में उनके विषय में, उनके रास्ते पे चलना आसान हो जाता है। और वही भगवान हमको बार बार जन्म लेकर यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ बड़े बच्चों आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। क्यों यहाँ पर यहाँ तड़प रहे हो, इतने भूल भुलैया में, झूठ मूठ के डरावने सपने में क्यों आप समय बिता रहे हो? मैं आ रहा हूं और लीला करने वाला हूं, आपको बुला रहा हूं, आ जाओ, पुकार रहा हूं तुमको। जब हम उनको पुकारेंगे तो वो आ जाएंगे। आप अनुभव करके देख लो कैसा है ना। समझो मैंने मधु की बोतल जो है ना, हनी की बोतल खोल के मैंने उसको पी के देखा है कितना मीठा होता है ना। और मैं आपको दिखा रहा हूं ये मधु की बोतल है, ये फलाने कंपनी का है, ये बहुत नेचुरल है, बहुत कुदरती है, बहुत प्योर है, और बहुत अच्छे मौसम में निकाला हुआ है, बहुत मीठा है, मैंने भी खाया है। और मैं बोलते जा रहा हूँ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो मैं कहूँगा सारे घंटे व्यर्थ है इसके अंदर। जब तक आप वो बोतल अपने हाथ में लेके खुद नहीं चाटते तब तक मेरा सारा प्रवचन वेस्ट है। प्रवचन तो मैं देते ही रहूँगा शाम तक, कल शाम तक भी देते रहूंगा, लेकिन जब तक मधु की बोतल अपने हाथ में ले लेते आप तब तक मैं क्या कह रहा हूँ आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। हो सकता है आपको लगेगा कि ये पागल हो गए बार बार वही बोल रहे हैं ये भी आप सोच सकते हो। तो ऐसा ये विषय है भगवान का, जैसे कि वो पहले गेट पर जो कुत्ता भोंक रहा है उसके पास टाइम नहीं है कि लास्ट वाले गेट वाले को बोल के अरे ये कुत्ता पहला इधर आके देख, वो चोर वहां से जा रहा है तभी तुम भोंकने को आरंभ करना, पहले क्यों भोंक रहे हो तुम? इतना समय नहीं उसके पास कन्विंस करने के लिए। वो श्रद्धा का ही मार्ग है जिसके वजह से वो थर्ड गेट से भी भोंक रहा है, वो पहले गेट से भी भोंक रहा है, सब लोग भोंक रहे हैं क्योंकि श्रद्धा का विषय है। थोड़ी श्रद्धा रखेंगे तो वो भगवान जो कह रहे हैं ना जन्म कर्म चमे दिव्यम, वो सत्य होते हुए आपके जीवन में अनुभव होगा आपको, इट विल बी अ रियलिटी फॉर यू। और बाय द वे छोड़े, लास्ट में 3 मिनट बाकी, उसमें बताता हूं मैं ये कृष्ण कौन है, ये कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, राम में और कृष्ण में और नरसिंह में अंतर क्या है? कि कृष्ण जो है वो सर्व कला से पूर्ण है, उसमें राम में कोई भेद नहीं है, लेकिन वो जब राम के रूप में आते हैं तो 4 गुणों का प्रदर्शन नहीं करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं, कैसे रहना है आपको वो बताते हैं, अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, बहुत सारी शक्ति दिखाते हैं लेकिन पूरी शक्ति दिखाते नहीं है। मर्यादा के लिए क्या क्या आवश्यक है उतनी शक्ति दिखाते हैं। मर्यादा क्या कहती है, अगर पत्नी का अपहरण किया जाए, शत्रु का वध करना चाहिए कुल के साथ, तो सारी शक्ति दिखाकर वो कुल के साथ रावण का वध कर देते हैं, लेकिन रासला नहीं रचाते हैं, वो किसी पर्वत को नहीं उठाते हैं। उठाते क्या कभी मैया को मुंह खोल के उन्होंने ब्रह्मांड का दर्शन कराया क्या? इसलिए वो कृष्ण है, वो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, राम से बड़े ऐसा नहीं है, वो राम और कृष्ण एक ही है, लेकिन राम के रूप में भगवान मर्यादा दिखाते हैं और उसके लिए कितना जरूरी है उतना ही शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उतना ही वैभव दिखाते हैं। लेकिन कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनके लिए कोई जरूरत नहीं रावण को आने के लिए, वो ऐसे ही अपना पर्वत उठा लिया, वर्षा हो गई उठा लिया पर्वत, 7 दिन 7 रात, किसी ने आश्चर्य नहीं किया। किसी अवतार में पढ़ा आपने नरसिंह भगवान ने मक्खन चुराया गोपियों के घर जाके? अब सुन के हंसने लगेंगे, अरे नरसिंह भगवान कैसे मक्खन चुरा कर सकते, लेकिन वही नरसिंह भगवान जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो नटखट बालक बन के गोपियों के घर में चोरी करके उनको अनंत आनंद का अनुभव दे सकते हैं। वही जब इंद्र वर्षा करते हैं तो 7 दिन 7 रात पर्वत को उठाकर सबको आश्रय देते हैं, सबको आनंद का अनुभव देते हैं, भयंकर दुख के बीच में प्रचंड आनंद का अनुभव देते हैं, ऐसे ही कृष्ण भगवान है। जो लीला उन्होंने किया है वो किसी ने नहीं किया है। आज तक हमने देखा है क्या कि राम ने 1000 रूप धारण कर लिए, कृष्ण भगवान ने अनेकों बार करोड़ों रूप धारण कर लिए हैं, रासलीला में, ब्रह्म सम्मोहन लीला में, ग्वाल बालों को लीला में, प्रचंड लीलाओं में उन्होंने अनंत रूप धारण कर लिए और फिर समेट गए, फिर वापस बिखर गए, फिर समेट गए, फिर बिखर गए, फिर ब्रह्मा को बिविल्डर कर दिया, पूरा भ्रमित कर दिया उन्होंने। ऐसी अद्भुत लीला किसी भी अवतार ने नहीं की आज तक, क्योंकि भगवान जैसे है, अपने जैसे हैं, वैसे ही पूरे शक्ति के साथ में कृष्ण के रूप में आते हैं और अद्भुत अकल्पनीय लीला करते हैं, जिससे हृदय को केवल आनंद की प्राप्ति होती है। आप बोलेंगे क्या सब झूठ मूठ की बातें हैं, पर्वत उठाया, क्या बोल रहे हैं आप, लेकिन आप जब उसको सुनोगे तो श्रद्धा न होते हुए भी आपको बड़ा आनंद का अनुभव होगा। आप बोलेंगे बालक झूठ है, कोई सच है ही नहीं बालक ही, लेकिन जब उसकी माखन चोरी की कथा आप सुनते हो, सुनते वक्त आपको बड़ा आनंद आएगा। ये भी हकीकत है, ये हकीकत है, आप देख लो सोचकर विचार करके इसके बारे में, क्योंकि वो भगवान के विषय में है। श्रद्धा नहीं रखो या रखो, भगवान तो भगवान ही होते हैं, है ना। आप श्रद्धा रखो या ना रखो, भगवान अपना सत्य जो है वो बदलता नहीं। उसके बारे में सत्य कभी भी आपके मानने न मानने से बदलता नहीं है, याद रखना, कभी भी सत्य सत्य ही रहता है। उसके लिए आपके विश्वास की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य आपके विश्वास पर डिपेंडेंट नहीं है। विश्वास रखा आपने तो आपका भाग्य है, नहीं तो आपका दुर्भाग्य है। सत्य पर विश्वास करेंगे तो आपका भाग्य है। सत्य को आपके विश्वास की आवश्यकता नहीं है, आपको सत्य पर विश्वास रखने की आवश्यकता है, तब जाके आपके जीवन का कल्याण होगा। इसलिए भगवान पर विश्वास रखने की हमको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं, वो मौका दे रहे हैं, लेकिन आपने नहीं रखा उनका कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता हमारा ही है। आप उनके जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मनाएंगे तो आपको लाभ है उसका। आप उनके बारे में नहीं जानकारी करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, आप जानकारी कर लेंगे तो आपको लाभ है उसका। और वो लाभ का मौका देने के लिए भगवान आते हैं, जिनको लेना है ले लो, इनको नहीं लेना है मत लो, चले जाते हैं। लेकिन जो लेते हैं वो समझते हैं कितने भाग्यवान हैं हम, वो छोटे से नंबर में हैं लेकिन वो कितने भाग्यवान हैं। वो देख रहे हैं कि अनंत जनता जो है बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में दुर्भाग्य में फंसी हुई है, उनको पता नहीं है, और हम थोड़े नंबर में हैं लेकिन भाग्य में हैं, सत्य के ऊपर आधारित अपना जीवन चल रहा है, तो अपने भाग्य को पहचानते हैं। वो ये सोचते नहीं, अरे हम तो बहुत कम हैं, उधर तो बहुत लोग हैं, श्रद्धा नहीं करते हैं, तो क्या ये सत्य है कि गलत है, ऐसा उनके मन डगमगाता नहीं उनका मन कभी भी। उनका मन जो है उनके अनुभूति पर, उनके साक्षात्कार पर स्थिर रहता है, क्योंकि जिसने एक बार उस मधु के बोतल को खोल के मधु को चाट लिया, उसको बार बार प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं है कि मधु मीठा होता है और मधुर होता है। एक बार चख लिया तो जो विश्वास हो गया उसके लिए बार बार वही प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। उस प्रकार से सत्य का, भगवान का जिसने अनुभव कर लिया है, उसको बार बार वो भगवान है, भगवान नहीं है, भगवान है, इसकी चर्चा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग भक्ति विधान में हो, बड़े भाग्यशाली हो, हाँ, यहाँ पर ऑन ड्यूटी भगवान के विषय में चर्चा होती है, सुनने को मिलता है। नहीं तो कोच किसको इंटरेस्ट है कि आप भगवान के बारे में सुने, अपना काम छोड़कर चलो काम पे चले जाओ, सब लोग टाइम पास कर रहे हो, 1 घंटा यहाँ पर पगार लेकर, ऐसा कुछ बोल सकते ना। लेकिन यह मौका मिल रहा है क्योंकि आपके ये पूर्व पुण्य का परिणाम है, आपने पुराने जमाने में, पुराने समय में बहुत पुण्य किए हैं, इसलिए आपको काम के जगह पर ऐसा भाग्य प्राप्त हो रहा है। कि आपको समझे या ना समझे, आप माने या ना माने, कान पर तो विचार पड़ रहे हैं भगवान के विषय में, उनका विषय चर्चा किया जा रहा है यहाँ पर, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए मैंने पहले आपको धन्यवाद दिया कि आप लोग भाग्यवान लोग हो, कि आप इतने लोग संख्या में साथ में आकर भगवान के विषय में सुनने के लिए उत्सुक हो। इसी उत्सुकता के वजह से सुखदेव जी ने पूरा भागवत परिषद को सुनाया, क्योंकि उत्सुक थे सुनने के लिए। ऐसे आप उत्सुक हो इसलिए आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, कोई भूल भुलैया नहीं है, कोई ऐसा ड्रीम नहीं है, ये सत्य है। सत्य का, सत्य के, सत्य तरीके से अगर सत्य को अपनाया जाए तो सत्य आपको मालूम पड़ेगा एक दिन। फिर उस बात को, उस व्यक्ति को बार बार असत्य क्या है, सत्य क्या है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जन्माष्टमी धूमधाम से मनाओ, उस व्यक्ति के बारे में जान लो कि वो कौन है, उसकी लीला क्या है, उसके गुण क्या है, उसका ऐश्वर्य क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उसका गौरव क्या है, उसके बारे में जान लो, आप प्यास और भूख भी भूल जाएंगे, इतना आनंद आएगा आपको। भगवान का विषय ऐसा है। बीमार आदमी भी जब बोलने लगता है तो बीमारी को भूल जाता है वो, गरीबी को भूल जाता है, कष्ट को भूल जाता है, ऐसा विषय है ये। और किसको ऐसी अवस्था पसंद नहीं है कि मैं मेरी गरीबी को भूल जाऊं, मेरे शरीर के कष्ट को भूल जाऊं, मेरे बुखार को भूल जाऊं, मेरे तकलीफों को भूल जाऊं, ऐसी चीज में मग्न हो जाऊं जो मुझे किस दुख का याद ही न दिलाए। ऐसे चीज जिसको प्राप्त है वो क्यों आएगा बार बार दुनिया में कष्ट भोगने के लिए, उस चीज में मग्न होने का प्रयास करेगा वो। कम से कम यहां पर भी मैं उस चीज में मग्न हो जाऊंगा तो यहां के दुख से मैं जुदा रहूंगा हमेशा, भाग्य आगे का देखा जाएगा, अभी तो मैं मुक्त हो रहा हूं, कुछ समय के लिए क्यों ना हो, लगा रहूंगा उसमें तो मुक्त होते रहूंगा, ये विचार भी अच्छा है। और हमने यहां पर कई भक्तों को ऐसा देखा हुआ है, मरते हुए इतना पीड़ा पाते हुए, लेकिन भगवान की कथा सुनते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते हुए वो शरीर छोड़ के चले गए हैं। यही रहस्य है इसका। आइए सब मिलकर इस रहस्य का भेद करें और जीवन में भगवान की प्राप्ति करके समृद्ध होकर लौट के जाएं, नहीं तो वही हालत है भिखारी जैसी मरते हुए। सिकंदर द ग्रेट, हाँ, ऐसे हाथ खुले पड़े हैं, बोल रहे मेरे हाथ खुले रखो, मैं कुछ भी लेकर नहीं आया था, कुछ भी लेकर नहीं जा रहा हूं, बीच में बहुत कुछ हो गया, सब छोड़ना पड़ा, अभी जा रहा हूं, इसलिए मेरे हाथ कफन के बाहर खुले रखो, ऐसा सिकंदर बता के गया था। वैसा सिकंदर बन के आप मत जाओ यहां से, आपके हाथ भरे रहने दो भगवान की कृपा से, हृदय भगवान की कृपा से भरे रहने दो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।